अपनी बात निराला मेरे सर्वाधिक प्रिय कवि रहे हैं, इसलिए नहीं कि मैंने 2-3 दशकों तक उनकी कविताओं का अध्यापन किया है, बल्कि इसलिए कि वे मेरे रचनात्मक मनस को कहीं बहुत गहरे छूते थे, उद्वेलित करते थे और मुझे अपनी प्रगीतात्मकता रचना शैली की ओर बरबस आकर्षित करते थे। मिलना उनसे केवल एक बार हुआ, मैनपुरी के साहित्य सम्मेलन के काव्य मंच पर 1952 के आसपास। उस घटना से संबंधित एक संस्मरण प्रासंगिक हो सकता है। सम्मेलन में न केवल उस समय के प्रतिष्ठित साहित्यकार महादेवी वर्मा, चतुरसेन शास्त्री आदि सम्मिलित हुए थे, शीर्षस्थ नेता भी आए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी वहाँ पहुँचे थे और अपने पद की गरिमा के अनुरूप किसी बड़े अतिथि गृह में ठहरे थे। साहित्यकारों के लिए अन्यत्र व्यवस्था थी, निराला जी के लिए एक अलग कक्ष, शेष लोगों के लिए सुविधा की दृष्टि से अलग अलग सामूहिक व्यवस्थाएं। 3 दिन का आयोजन था। दूसरे दिन अपराह्न हम सभी लोग निराला जी के कक्ष में गए। उन्होंने हम सबके अनुरोध पर अपना प्रसिद्ध गीत सखी बसंत आया हारमोनियम पर स्वयं बजाते हुए सुनाया। इसके बाद किसी ने शायद शरारतन यह कह दिया कि प्रधानमंत्री नेहरू जी आए हुए हैं और वह निराला जी को याद कर रहे हैं। निराला भड़क उठे और बोले कि यदि वह देश के प्रधानमंत्री हैं तो मैं साहित्य का प्रधानमंत्री हूँ, उन्हें आकर मुझसे मिलना चाहिए। बाद में नेहरू जी थोड़ी देर के लिए वहाँ आए भी थे। कवि सम्मेलन 2 दिन चला था। दोनों दिन अध्यक्ष निराला जी ही थे। पहले दिन उन्होंने अपनी कविता शिवाजी का पत्र के पाठ के पूर्व सभा को अंग्रेजी में संबोधित किया, दूसरे दिन ठेठ उर्दू में। मेरे मन पर निराला उसी समय से छा गए थे। निराला की कविता पर मैंने एक पुस्तक 20-22 वर्ष पूर्व लिखी थी। इधर मैं उनकी कुछ विशिष्ट कविताओं को लेकर एक बड़ा आलेख तैयार करने का मन बना रहा था। इसी दौर पुरवार जी ने राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति पर लिखने के लिए मुझसे अनुरोध किया। अंततः उन्होंने मुझसे लिखवा ही लिया। मुझे भी यह संतोष हुआ कि जो काम मैं करना चाहता था वह इस बहाने ही सही किसी कदर पूरा तो हुआ। रचनात्मक प्रतिभा की दृष्टि से निराला विश्व के कुछ इने गिने बड़े रचनाकारों की श्रेणी में आए हैं। राम की शक्ति पूजा ही क्लासिक कवियों की श्रेणी में स्थापित करने के लिए पर्याप्त है, पर हम मात्र यह कहकर दायित्व मुक्त नहीं हो सकते। निराला ने शास्त्रवाद की गरिमा अपनी नई रचनात्मक भंगिमा के माध्यम से हासिल की है और वहीं उन्हें शास्त्रवाद के ऊपर उठाती है, उससे बड़ा बनाती है। राम की शक्ति पूजा की समक्षता में कुकुरमुत्ता शीर्षक कविता एक बड़े प्रश्न चिन्ह के रूप में आ खड़ी होती है, जो राम की शक्ति पूजा से कम सार्थक नहीं है। निराला ने स्वयं अपनी सांस्कृतिक इमेज कई बार तोड़ी है, अपनी ही मूर्ति का बार बार भंजन किया है। पृष्ठ संख्या 10। उनके चरित्र प्रधान छोटे छोटे उपन्यास चतुरी चमार, बिल्ले सूर वकील, कुल्ली भाट इस सच्चाई को रेखांकित करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि निराला को अपनी सांस्कृतिक छवि को लेकर किसी प्रकार की ग्लानि या पछतावा है, बल्कि यह कि वह रूढ़ियों को तोड़कर नई दिशाओं की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने में अपनी रचनात्मक सार्थकता मानते थे। यही कारण है कि निराला छायावाद के उन्नायकों में से एक होते हुए भी नई काव्य प्रवृत्तियों के प्रेरक और प्रवर्तक माने जाते हैं। आधुनिकतम काव्य आंदोलन नवगीत भी अपना इतिहास निराला के ही वस्तुनिष्ठ प्रगीतों से आरंभ करता है। निराला छायावादी कविता के उद्भव और विकास से गहरे जुड़े रहे हैं। छायावाद का प्रवर्तक ऐतिहासिक दृष्टि से प्रसाद को माना जाता है, जो युक्ति युक्त है। निराला की चर्चा हिंदी में कुछ बाद में शुरू हुई। आलोचकों और पाठकों का ध्यान खास तौर से उनकी जूही की कली शीर्षक कविता सी गया, जो लंबे समय तक साहित्यिक चर्चा के केंद्र में रही। अब यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि जहाँ छायावाद के प्रवर्तन का श्रेय प्रसाद को है, वहीं छायावादी कविता का प्रथम सशक्त प्रारूप प्रस्तुत करने का श्रेय असंदिग्ध रूप से निराला को है। छायावादी कविता को निराला ने अपने ढंग से विकसित किया, वस्तु दृष्टि से भी और कला दृष्टि से भी। कला दृष्टि से मुक्त छंद उनकी सबसे बड़ी देन है। जूही की कली मुक्त छंद में ही लिखी गई है। छायावाद की वस्तु भूमियों को नए आयाम भी निराला ने दिए। कविता के निर्वैयक्तिक होने की सार्थकता का बोध सबसे पहले निराला ने ही कराया। उनकी इस नई दृष्टि के तहत ही बाद में सारे वाद उन्हें प्रणाम करने के बाद ही आगे बढ़े। निराला की समूची काव्य यात्रा को 3 सोपानों में रखा जा सकता है। प्रथम सोपान जूही की कली 1916 से आरंभ होकर राम की शक्ति पूजा 1936 या अधिकतम तुलसीदास 1938 के सर्जन प्रकाशन तक का है, जिसमें परिमल, अनामिका, गीतिका और तुलसीदास आदि शीर्षक प्रतियां सामने आई। कुकुरमुत्ता 1941 के साथ यथार्थ और व्यंग्य का युग आरंभ हो जाता है। निराला कुकुरमुत्ता के बाद कोई उल्लेखनीय लंबी कविता नहीं लिखते। वे उनके आवेगात्मक आरोह तथा स्वस्थ की दृष्टि से अवरोह के दिन थे। इस दौरान निराला ने विक्षेप के तेवर में भारतीय समाज की जड़ताओं, अनर्गल रूढ़ियों, उसके अभिजात्य परक दंभ, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था के खोखलेपन पर निर्ममतापूर्वक प्रहार किए हैं। उनका विक्षेप उनकी काव्य सृजना के मध्यकाल 1940 से 1950 में जैसे उनके अवचेतन की सच्चाइयों का अप्रतिबंधित उद्घोषक बन गया था। काव्य भाषा के अंतिम सोपान पर निराला पुनः अपने आरंभ की ओर लौटते हैं। यह एक विचित्र परावर्तन है। जीवन का समूचा संघर्ष झेल लेने के बाद पुनः अपने आरंभिक मनहलोक में लौट आते हैं, जहां बदलती हुई ऋतुएं हैं, बहुरंगी मौसम हैं, सौंदर्य के वह दमकते बिंब हैं जो कवि को अब भी मोहते बांधते हैं। इन गहरे निजी वैश्विक रिश्तों के साथ निराला से सविना भावेन जुड़ी वह अदम्य करुणा भी कुछ और निखर कर सामने आती है, और वह अटूट सांस्कृतिक आस्था का आस्तिकता भी, जो कठिन से कठिन क्षणों में उनकी जिजीविषा को संपोषित संवर्धित करती रहती है। निराला की काव्य यात्रा के अंतिम चरण के प्रार्थना गीतों को मैं अपनी पराजित मना स्थिति या पलायन वृत्ति का वाचक नहीं मानता। जो कवि अंतिम सांस तक यह कहे, एक अविरत मारण मरण हाथ दो दो, पुनः सवेरा एक और फेरा ही जी का। पृष्ठ संख्या 11, उसे ना हम निराशावादी मान सकते हैं और ना पलायनवादी। सच्चाई शायद यह है कि रचनाकार के रूप में निराला अंतिम क्षणों में अपनी रचनाशीलता के उस उदग्र यौवन प्रहर में पुनः पहुंच गए हैं, जहां आस्था थी, अडिग संकल्प था और था हर सामाजिक बुराई से जूझने का अपराजेय मनोबल। सामान्य मनुष्य अपने अंतिम क्षणों में प्रायः ही बचपन की स्मृतियों से जुड़ जाया करता है। उसकी स्मृति प्रखरतम जो हो जाती है। निराला भी अपने देहांतर की अवधि में अपने रचनात्मक आदिम क्षणों से जुड़ते हैं और जाते जाते पाठक का हौसला बढ़ा जाते हैं। अपने मूल की ओर लौटना मिथकीय गवेषणा का भी एक रोचक पहलू है। निराला की कविता में वस्तु भूमियों का वैविध्य है। श्रृंगार, प्रकृति, पुरावृत्ति और इतिवृत्ति, यथार्थ, प्रणति आदि, प्रायः उन सभी वस्तु क्षेत्रों पर निराला ने अपनी दृष्टि डाली है, जो प्रासंगिक थे। उनकी दृष्टि बहुत कुछ इलियट जैसी थी, जो परंपरा को कथोचित सम्मान देते हुए मौलिकता का पक्षधर था। निराला ने भी प्रायः ही परंपरागत विषयों को अपनाया, परंतु पर उन्हें नई निजी मौलिक दीप्ति के साथ प्रस्तुत किया। श्रृंगार को ही ले तो निराला का एक महत्वपूर्ण योगदान यह रहा है कि उन्होंने रतिभाव को अधिकतर पारिवारिक और दाम्पत्य परिवेश में प्रस्तुत किया है। परकिया भी निराला के यहाँ है, किंतु वह बहुत सहज नहीं है। अक्सर वह अध्यात्म उन्मुख हो जाती है, मौन रही हार। श्रृंगार के क्षेत्र में निराला की दूसरी उल्लेखनीय विशिष्टता उनका वस्तुनिष्ठ सौंदर्यांकन है, जिसके तहत वह स्वयं अपनी पुत्री की वह संधि तथा उसके यौनागम की अनुरंजनकारी चित्रण करते हैं। यथार्थ परकता और प्रगतिशीलता की साम्यवादी तक सीमित दृष्टि को उन्होंने बड़ा कैनवस दिया। उनकी प्रगतिशीलता के दायरे में वह तो आते ही हैं जो आर्थिक दृष्टि से शोषित एवं विपन्न हैं, वह भी आते हैं जो किसी निरर्थक अमानवीय रूढ़ि के शिकार हैं। विधवा जो कुलीनता तथा आभिजात्य के दंभ को चुप रहकर झेलते रहने के लिए विवश हैं। प्रेम संगीत गर्म पकौड़े जो प्रशासनिक अमले की छीन झपट को दिन प्रतिदिन झेलते रहने की स्थिति से उकता कर या तंग आकर विद्रोह कर बैठते हैं। जल्द जल्द पैर, महंगू महंगा, यथार्थ के और भी अनेक पक्ष हैं जिन पर तथाकथित प्रगतिवादियों का ध्यान कभी नहीं गया, किंतु जिन्हें निराला ने उजागर किया है। निराला चित्रणशील कवि हैं। चित्रण सदैव वस्तुनिष्ठ होता है, आलंबन को यहाँ वस्तु के रूप में आना पड़ता है। चित्रण की यह प्रतिभा हिंदी कविता में पहली बार निराला में ही लक्षित हुई। अपनी इसी प्रतिभा विशिष्टता के कारण वह अपने देहावसान के 2 दशक बाद आरंभ होने वाले नवगीत काव्य आंदोलन के जनक एवं प्रेरणा स्रोत माने गए। प्रगीतों में उनसे पूर्व स्वानुभूति ही एकमात्र या आधारभूत विषय थी। निराला ने गीत काव्य को इस अंधकूप से निकाला। एक ओर उन्होंने प्रगीतों के लिए वस्तुपरक दृष्टि की आधारशिला रखी, दूसरी ओर उन्होंने आत्मनिष्ठ रचनाशीलता को भी बृहत्तर आयाम दिया। आत्म केंद्रित प्रगीत रचना को उन्होंने भारतीय पारिवारिक दाम्पत्य जीवन के खुले आंगन में उतारा। यह निराला की ही प्रतिभा थी जो अत्यंत निजी विषय सरोज स्मृति को भी चित्रणात्मक स्तर पर प्रस्तुत कर सकी। निराला ने पृष्ठ संख्या 12 अपने प्रगीतों के द्वारा यह भी स्थापित किया कि प्रगीतों में बाह्य यथार्थ प्रकृति, श्रमिक, किसान, बाण कूटने वाला तथा रस्सी बटने वाला श्रमजीवी आदि को भी चित्रित किया जा सकता है और उसे चित्रित किया भी जाना चाहिए। यही दोनों विशिष्टताएं नवगीत काव्य आंदोलन की रीढ़ हैं और इसीलिए निराला इस काव्य आंदोलन के प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। निराला बड़े अंतर विरोधों या विरोधाभासों के कवि रहे हैं। एक ओर वह राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसी अभिजात वर्गीय कविताएं लिखते हैं तो दूसरी ओर कुकुरमुत्ता जैसी जनात्मक किसी सीमा तक भदेश कविता भी। जिस निराला ने नारी सौंदर्य को कल्पना और संवेदना के अत्यंत कोमल और उदात्त रंगों में अपनी कविता के चित्रपट पर बार बार उरेहा था, उसी निराला ने खजोहरा शीर्षक कविता लिखी जिसे सौंदर्य प्रियता का एंटी क्लाइमेक्स तक कहा गया। निराला ने ही भाव की विकासात्मक परिणति तथा सधे हुए शिल्प में श्रेष्ठतम प्रगीत लिखे और उन्होंने ही मुक्त छंद का प्रवर्तन भी किया और उसकी वकालत भी की। उन्होंने काव्य भाषा को एक और समाज बहुल तत्समता की पराकाष्ठा तक पहुंचाया। राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास और उन्होंने उर्दू बहुल शब्दावली में गजलें भी लिखीं। वो छायावाद के उन नायकों में प्रमुख रहे हैं, किंतु यह भी सही है कि वे प्रायः छायावाद के बाहर रहे हैं। यह भी नहीं कि छायावाद उत्तर कोई काव्यधारा निराला को अपनी बपौती मान सके। निराला वस्तुतः किसी के नहीं हैं और सभी के हैं। वे मूलतः रूढ़ विरोधी थे। इस सीमा तक कि वे अपने संबंध में भी किसी बंधी बंधाई धारणा को स्थापित नहीं होने देना चाहते थे, इसीलिए वे बार बार अपनी ही इमेज को तोड़ते रहे, कभी असुंदर और भदेश के द्वारा तो कभी कुभाषा के द्वारा। अंतिम चरण में यहाँ आत्म विद्रोह थोड़ा बहुत थमा है, किंतु उनकी मूल वृत्ति तब भी निःशेष नहीं हुई है। प्रासंगिकता आज चर्चाओं का एक आम मुद्दा है। हर किसी रचनाकार को लेकर उसकी प्रासंगिकता की जांच करने का रिवाज सा चल पड़ा है। ध्यान देने की बात यह है कि यह सवाल पुराने प्रतिष्ठित रचनाकारों को ही लेकर उठाया जाता रहा है। ध्यान देने की बात यह है कि यह सवाल प्रतिष्ठित पुराने रचनाकारों को ही लेकर उठाया जाता रहा है, और इस बहाने उनकी उक्तियों की मनमानी व्याख्या की जाती रही है, जो एक सुविचारित साहित्यिक राजनीति या रणनीति का हिस्सा है। यह साहित्य के साथ विश्वासघात है और समय इसकी पोल खोलेगा। निराला की प्रासंगिकता के संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वह मुक्तिबोध की अपेक्षा अधिक प्रासंगिक हैं। दोनों की कविताओं में सामंती युग के शोषण संदर्भ भी हैं और आधुनिक युगीन औद्योगिक यांत्रिक सभ्यता की अमानवीयता तथा व्यवस्था के प्रति असंतोष भी। किंतु मुक्तिबोध अपने अवचेतन परक अनर्गल आवेश में प्रायः ही संदर्भच्युत हो जाते हैं, और समाधान के रूप में परम अभिव्यक्ति या तथाकथित अस्मिता की खोज की अपनी सुरक्षित कंदरा में प्रविष्ट होकर भीतर से सांकल बंद कर लेते हैं। जबकि निराला आदि से अंत तक युद्ध क्षेत्र में ही रहते हैं, लड़ते हैं, घायल होते हैं, फिर उठकर लड़ते हैं, और जीवन के अंतिम क्षणों में भी मरने मारने का हौसला रखते हैं। निराला जूझने वाले कवि हैं। जीवन संघर्ष से आतंकित होकर अवचेतन की गुफा में शरण लेने वाले भगोड़े का पुरुष नहीं, वे इसलिए आज भी प्रासंगिक हैं और आगे भी रहेंगे, वैसे ही जैसे कबीर और तुलसी। फिर निराला तो अभी 3 साढ़े 3 दशक पूर्व हमारे बीच थे। इस दौरान कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। जो समस्याएं निराला के समय में थी वह आज भी हैं। नारी का उत्पीड़न आज भी हो रहा है। दहेज का दानव आज भी हर पृष्ठ संख्या 13 लड़की वाले के घर की चौखट पर खड़ा है। औरतें आज भी पत्थर तोड़ती हैं। विधवाएं आज भी अशुभ मानी जाती हैं। निराला ने इन्हीं सामाजिक विद्रूपताओं के विरुद्ध अपने लेखन के माध्यम से जिहाद छेड़ा था, बल्कि वह व्यक्ति स्तर पर भी इस सामाजिक क्रांति में अग्रणी बने थे। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। किंतु जब निराला की प्रासंगिकता की जांच हम आज की स्थितियों में के संदर्भ में करते हैं, तो आधुनिक युग में केवल वही समग्रता प्रासंगिकता के योग्य ठहरते हैं। शेष रचनाकार अप्रासंगिक नहीं है, किंतु उन्हें आज की स्थितियों में संपूर्णतः प्रासंगिक नहीं माना जा सकता। जीवन के यथार्थ से भागने वाला रचनाकार कभी प्रासंगिक नहीं होता। निराला अपने समय में भी प्रासंगिक थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि उनकी रचनाशीलता के केंद्र में मनुष्य है, जिसे सदैव हर हाल में जूझना है। शोषण के विरुद्ध बगावत करनी है, शोषण सत्ता से टकराना है। निराला हर उस आदमी के साथ हैं जो शोषण का विरोध करता है और अवसर आने पर उसका सामना भी करता है। निराला जब तक प्रासंगिक रहेंगे, जब तक सही अर्थों में एक शिष्ट व्यवस्थित मानव समाज की परिकल्पना चरितार्थ नहीं हो जाती, हम तो अभी केवल उस सतयुग की ही कल्पना ही कर सकते हैं। निराला ने न केवल हिंदी कविता की भाषा के अनेक प्रारूप प्रस्तुत किए, अपितु उन्होंने काव्य भाषा की आधारवत्ता को ही चुनौती दे दी। बात स्पष्ट करने के लिए किसी भी कवि को लिया जा सकता है, प्रसाद को ही लें तो उनकी काव्य भाषा के विकास में सरल रैखिकता मिलेगी। पहले परंपरागत ब्रजभाषा चित्राधार, फिर आरंभिक खड़ी बोली कानन कुसुम महाराज, प्रेम पथिक, फिर सुधरती हुई खड़ी बोली झरना, और फिर परिनिष्ठ हिंदी आंसू लहर का मायने। यह विकास क्रम समझा जा सकता है क्योंकि प्रायः सभी रचनाकारों की अभिव्यक्ति क्षमता का विकास सरल रैखिक हुआ करता है। निराला तो निराले थे, यहाँ भी उन्होंने अपने निरालेपन का परिचय दिया। निराला की आरंभिक काव्य भाषा का रूप, उनकी प्रथम प्रकाशित तथा उन्हें हिंदी कविता के इतिहास से जोड़ने वाली उनकी जूही की कली में देखा जा सकता है। बिजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरे, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तन तरुणी, जूही की कली दृग्बंध किए शिथिल प्रतांक में। भाषा तत्सम प्रधान है, छोटे छोटे हल्के समास भी बीच में हैं। इस भाषिक प्रारूप का चरम उत्कर्ष राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास में लक्षित होता है, जिनमें समास विजड़ित तत्समता की प्रवृत्ति अपने शिखर पर है। ध्यान देने की बात यह है कि इस अवधि के बीच 1916 से 1936 निराला विधवा और भिक्षुक जैसी कविताएं भी लिख चुके थे, जिनमें तत्समता का आग्रह कतई नहीं था। भिक्षुक की ये पंक्तियां देखें। पृष्ठ संख्या 14। दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। गीतिका के प्रगीत भी इसी अवधि में लिखे गए हैं, जिनमें तत्समता और समासिकता की प्रवृत्ति की विद्यमानता रही है, किंतु वहाँ इस प्रकार की जनात्मक भाषा भी है। छोड़ दो जीवन यो न मलो, ऐंठ अकड़ उसके पथ पर तुम रथ से यो न चलो। कुकुरमुत्ता से तो भाषा के संदर्भ में जैसे उनका व्यक्तित्वांतर ही हो जाता है। अब निराला को किसी भी शब्द से परहेज नहीं है, वह हिंदी का हो या ना हो, वह सलील हो या ना हो। यह दौर 1950-52 तक चला। इसमें उन्होंने उर्दू शब्दावली को व्यंग्य का माध्यम बनाया और गजलें लिखी। गजलकार के रूप में उन्हें स्वीकृति नहीं मिली, किंतु इस प्रकार की प्रयोगशीलता की दिशा तो उनसे मिली ही, जिसे आगे चलकर दुष्यंत कुमार के यहाँ परिपूर्णता मिली। अंतिम दौर में निराला ने सहज भाषा का प्रतिमान स्थापित किया, जिसे अर्चना आराधना गीत गुंज और सांध्य काकली में संकलित गीतों में देखा जा सकता है। यह हिंदी का टकसाली रूप है, जिसे निराला ने समाज विजड़ित तत्समता और उन्मुक्त प्रलाप की बहुभाषिक शब्दावली के टकराव और तनाव के बाद अभिव्यक्ति के सहज माध्यम के रूप में हासिल किया था। अन्य छायावादी कवियों ने इस क्षेत्र में कम योगदान नहीं किया है, किंतु उनमें शायद काव्य भाषा के विविध रूखों को परखने के बाद अपना माध्यम निर्धारित करने का धैर्य नहीं था, या फिर उनमें निराला जैसी प्रयोगशीलता की वृत्ति नहीं थी। जो भी हो, निराला को काव्य भाषा के एकाधिक रूपों के निदर्शन और उनके बीच से टकसाली हिंदी के एक सर्वमान्य रूप के उद्भावन का श्रेय अवश्य दिया जाना चाहिए। अंत में दो शब्द लंबी कविताओं के बारे में। लंबी कविता शास्त्रीय शब्द नहीं है। श्री नंद दुलारे वाजपेयी ने दीर्घ प्रगीत संज्ञा चलानी चाहिए थी, पर वह चली नहीं, क्योंकि प्रगीत का जैसा सामान्यीकरण उन्होंने किया था वह भ्रामक था। तो लंबी कविता एक अशास्त्रीय अभिधान था, जिसका प्रचलन मेरे विचार से राम की शक्ति पूजा के प्रकाशन के बाद ही हुआ। उसके पहले कविता के इस विशिष्ट वर्ग की चर्चा मेरी जानकारी के अनुसार हिंदी में नहीं हुई थी। मैंने जब अपनी पुस्तक निराला का काव्य 1974 में निराला की लंबी कविताएं शीर्षक से एक अध्याय लिखा था, जिसे मैंने इस पुस्तक के परिशिष्ट में प्रायः यथावत रख दिया है, तब भी इस अभिधान का प्रचलन नहीं हुआ था। बाद में तो लंबी कविताओं पर काफ़ी कुछ लिखा गया, क्योंकि उस प्रकार की बहुत सी कविताएं प्रकाश में आ चुकी थी और आ रही थी। बहरहाल मेरा मानना है कि हिंदी में लंबी कविता की अवधारणा उसके निजी काव्य रूपात्मक विकास की देन है और उसके जनक निराला हैं। वैश घा हीरापुरी विश्वविद्यालय परिसर गोरखपुर जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव।